उसको लोकली जाके जब आप देखते हैं तो यहाँ एक इलाका बंद रोड का कहलाता है। ये इलाका ऐसा है जहाँ पे जब अफगान वार हो रही थी तो वहां तब से रशिया सोवियत यूनियन वाली, तो वहां से जब लोगों ने माइग्रेट करके इधर आना शुरू किया तो उन लोगों ने यहाँ पे अपने छोटे छोटे पॉकेट्स बना लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी आबादियां बन गई। फिर हमारी जो जैसे हमारा सिस्टम एक बिल्कुल नाकारा है, यहाँ पे किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 1000 रुपया दिया, उससे अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। फिर यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप मुकामी होती है, इसने अपना वोट बैंक जो है उसकी खातिर इन लोगों को यहाँ पे रहने का जवाब और मौका उनको दिया। इस तरह जगह जगह पे इस तरह की आबादियां कहीं ना कहीं मौजूद हैं और ये भी इसी तरह की एक आबादी है।
ओके, ये जो चार दहशतगर्द आप बता रहे हैं, एक इनमें खुदकुश बमबार भी था, वो भी मारा गया, बाकी दहशतगर्द जो हैं वो जिस तरह आपने बताया कि पुलिस के साथ कार्रवाई में वो मारे गए, कुछ मालूमात अभी तक सामने आई है कि इनकी शनाख्त के हवाले से या ये कि इनका ताल्लुक किस ग्रुप से था?
ये बताया अभी तक जो कुछ बताया गया है वो तो ये कहा जा रहा है कि तहरीके तालिबान जो तंजीम है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये उसके लोग हैं और इन लोगों ने यहाँ पे ये अपनी पनाहगाह बनाई हुई थी। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारा जितना बॉर्डर एरिया है यहाँ पे इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, इस तरह के ऑपरेशन पहले भी करना पड़े हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं जाहिर है कि छुपने की यहाँ पे यहाँ जगह मिल जाती है, उनके हामी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं जो उनको ये जगह देते हैं। तो ये भी जो है ये इसी तरह से यहाँ पे ये लोग मौजूद थे और इन्होंने ये जो कार्रवाई जो करना चाहते थे। लेकिन ये देखिए, ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी जो होती है ये बेसिकली हमारे जो पुलिस के जराए हैं या एजेंसियां हमारी जो कुछ कहती हैं वही हमें इसके बारे में पता चलता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा मीडिया को ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जब मीडिया कहीं ये बताता है कि यहाँ पे और भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये लोग जो हैं और इनके हामी जो हैं वो मौजूद हैं और ये लोग शहरों में जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं, अपनी गने लहराते हैं, तो तब हमारे बस बदकिस्मती ये है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। यही लोग इनकी पनाहगाहें साबित होते हैं फिर और ये इस तरह के जो ऑपरेशन फिर करना पड़ते हैं।
ठीक, हमारे साथ रहिए खालिद फारूकी साहब, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
जी ब्रिगेडियर साहब, मुस्लिम लीग नून को अगर हम देखें तो ये जमात जो है ये तालिबान के साथ मुबैना ताल्लुकात और तालिबान के लिए नरम गोशा रखने वाली जमात के तौर पर सामने जानी जाती रही है अगर हम देखें, और तालिबान के हक़ में शहबाज शरीफ समेत दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके जो बयानात हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, इसके बावजूद सूबा पंजाब में इस तरह के हमले करना तालिबान की जानिब से, इसकी क्या वजूहात आप देखते हैं?
दरअसल एक तरफ तो आप खुद जिस तरह फरमा रही हैं बिल्कुल सही है कि इस वक्त हुकूमत में जो लोग हैं ये तमाम तालिबान के हिमायती हैं। किसी मतलब है कि अगर आप मुस्लिम लीग नून को कहें, अगर आप पीटीआई को देख लें और इसी तरह दूसरी जमातें जो तालिबान मुखालिफ कुवतें थी जैसे ANP है, जैसे MQM है या पीपल पार्टी है, तो कुछ वो अपनी नालायकी की वजह से और कुछ हालात की वजह से वो हुकूमत में नहीं है। तो अभी ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये लोग अपना एजेंडा रखते हैं और उनको किसी ख़ास जमात से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, उनसे कुछ हासिल हो जाए वो इनसे डर जाए तो और बात है, लेकिन वो जो है वो अपना कोई ख़ास इनके लिए नरम गोशा नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो हमला करेंगे जिधर भी उनको जगह मैसर आएगी। और मैं समझता हूँ कि तालिबान को हमने अपने मिट्टी से तो निकाल दिया, यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही हमारे बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान में ये मौजूद है और ये कार्रवाई जो है कोई भी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हमें अपना इंटेलिजेंस टेस्ट करना होगा। और जैसे ये आपने कल की वाक़े की तफसीलात बता रही हैं, हमारे यहाँ अभी ज़्यादा जो हमें अटेंशन रखना है वो ये जगह है जो उनका नेटवर्क है हमारे मुल्क के अंदर, जहाँ पर आके ये पनाह लेते हैं, और फिर ऑपरेशन प्लान करते हैं, जैसे कल के वाक्य में ये कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे थे और हमें पहले पता चल गया और इनको मतलब है हमने ख़त्म किया, तो ये हमें तेज करना होगा और इनके साथ जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना होगा और तब जो है ये जो ऑपरेशन है ये कामयाब होंगी।
जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आपने कहा कि जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई की गई, काफ़ी कामयाब रही ये कार्रवाई, सारे दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। सवाल ये है कि इस किस्म की इंटेलिजेंस जो हैं वो बाकी तीन सूबों में हमें क्यों नहीं नज़र आती?
दरअसल होनी चाहिए सारी तीन सूबों में, लेकिन अभी जो अगर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो वफाकी हैं और वो सबसे पहले जो वफाक के नज़दीक यूनिट है वो पंजाब है, या उनके साथ उनके मरासिम भी उसी लिहाज से हैं जैसे मरकज में हुकूमत है वही सूबे में हुकूमत है, तो उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो बात वहाँ तक पहुँच जाती है। शायद दूसरे सूबे जो है जहाँ पर सूबाई हुकूमतें वो नहीं है जो कि वफाक की हुकूमत है, तो उनके दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन का फुकदान पाया जाता है और इस फुकदान की वजह से जो है मेरे ख्याल में उस किस्म की इंटेलिजेंस शायद प्रोवाइड की जाती हो लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा हो। और दूसरा ये है कि हमारे हुकूमत वैसे भी पूरी हुकूमत जो है वो जो इस्लामाबाद में होता है जो लाहौर में होता है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन ले जाता है और बाकी सूबों में अगर कुछ होता भी है तो वो इस तरह न्यूज़ नहीं बनती जिस तरीके से इस सूबे में पर्टिकुलरली, खासकर जो शहर मैंने आपको मेंशन किए उसमें खासकर जो है तालिबान की भी कोशिश होती है कि वहाँ पर हमला करें और ताकि उनको बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन रहे, और दूसरी तरफ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो भी ज़्यादा कोशिश करती है कि यहाँ पर कुछ ना हो।
ओके प्रोग्राम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और खालिद फ़ारूकी साहब, आज सरताज अजीज़ साहब जो है उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने दहशतगर्दों को काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया का जो किरदार है उस पे ज़ोर दिया है कि उसका इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए पाकिस्तान में। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है जब दहशतगर्द नज़रिए को काउंटर करने की हम बात करते हैं, और ये भी बताइएगा कि इस वक्त इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में कितना हो रहा है?
देखिए सोशल मीडिया बहुत एक्टिवली अपना रोल है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग एन पे एक माजी में एक ये कहा जाता रहा है कि उसकी हमदर्दियां जो हैं वो तालिबान के साथ रही हैं या उनकी तरफ से ऐसे बयान आते रहे हैं। शहरी इलाकों की ये जमात है मुस्लिम लीग एन, सोशल मीडिया जहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है वो शहरी इलाके हैं। इसी तरह से दूसरी एक जमात जो है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, राइट विंग की ये भी जमात है, इमरान खान इसके नुमाइंदे हैं, तालिबान के वो माजी में बहुत ज्यादा हमदर्द रहे हैं, और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जिस जमात के लोग इस वक्त भी और हम पिछले कई साल से देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे जिनकी प्रेजेंस हमें नजर आती है वो तहरीक इंसाफ की नजर आती है। अच्छा, जहां तक बाकी उन लोगों का ताल्लुक है जो कि मुतशद्दिद ख्यालात के मुखालिफ हैं वो सोशल मीडिया पे कम हैं, और अगर वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो उनके खिलाफ जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह की उनको थ्रेट किया जाता है, उनके नाम जिस तरह सोशल मीडिया पे दे दिए जाते हैं, बेशुमार लोगों के नाम सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जिनके बारे में ये कह दिया जाता है कि ये मजहब के दुश्मन हैं, ये मुल्क के दुश्मन, तो फिर वो लोग अपने लिए खौफ महसूस करते हैं। जब सरताज अजीज साहब ये कहते हैं कि सोशल मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो उनसे पहला ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि हुकूमत इसमें अपना रोल क्या प्ले कर रही है। अगर हुकूमत का काम महज इस तरह की बयानबाजी करना है और हुकूमत का काम अपने लोगों को सिक्योरिटी देना नहीं है, और हुकूमत अगर कोई ऐसी कानून साजी नहीं बना सकी कर सकी जिसके नतीजे में सोशल मीडिया पे थ्रेट करने वाले एलिमेंट जो हैं उनकी कहीं पकड़ हो सके, तो फिर आप ये बताइए कि जिस तरह मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने अभी जिस तरह से बात की या और लोग जिस तरह से बात करते हैं, वो कितने लोग हैं जो इन तमाम लोगों को फेस कर सकते हैं जिनके पास बंदूक भी होती है, और इसके साथ साथ वो यहाँ पे उनके हमदर्द भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। सो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आजादी इजहार सोशल मीडिया पे यकीनी तौर पे है, लेकिन आजादी इजहार का ज्यादा इस्तेमाल जो है मैं खुद एक मजहबी आदमी हूँ, मैं खुद अपने मजहब पे यकीन रखता हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरे अपने अकायद हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मुतशद्दद ख्यालात जो हैं उनका इस्तेमाल सोशल मीडिया पे ज्यादा होता है। जब आप पॉलिटिकली भी जाते हैं तब भी सोशल मीडिया में बिहेव इस तरह से किया जाता है कि आप फतवे जारी करते हैं अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। आप बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि ये अपनी बेवकूफियों की वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी बाहर हैं जो कि तालिबान की या अलकायदा की मुखालिफ थी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को, उन पॉलिटिकल एलिमेंट्स को जो कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं, उनको बिल्कुल क्लीन किया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको पॉलिटिकल सिस्टम से आउट किया जा रहा है, उनकी अपनी गलतियां अपनी जगह पे, लेकिन जो दूसरे अनासर हैं वो ताकत हैं, जिसका नतीजा हम हर रोज ये देखते हैं कि सोसाइटी में मजमूई तौर पर जो एक वो इंतहा पसंदी का मिलिटेंसी का बढ़ रहा है। और ये बहुत अफसोस की बात है, सरताज अजीज साहब के इस बयान से महज उनके ये कहीं नहीं साबित होता कि हुकूमत की भी अपनी ये नीयत है कि वो सोशल मीडिया को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ इस्तेमाल करे।
ठीक जी, और सोशल मीडिया को तो एक तरफ आप रखें, आम जो मीडिया है उसमें कहाँ तक दहशतगर्दों या जो इंतहा पसंद है उनके नज़रिए को काउंटर किया जा रहा है पाकिस्तान में, ये भी देखना है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि जो आम मीडिया है उसमें कहाँ तक आपको नज़र आता है, कहाँ तक जगह दी जाती है जो एक तरह से वो वॉइसेस हैं जो मॉडरेट वॉइसेस हैं उनको?
दरअसल मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो तो बिल्कुल उनकी आवाज़ नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि जो उनके खिलाफ खुल के बोलते थे वो आदमी आप उनको उंगलियों पे जो है वो गिन सकते हैं कि ये वो फलाना फलाना बोलता है, बाकी तो डर की वजह से बोलते नहीं हैं। इस मीडिया के ऊपर जो है मैं बात करता रहा हूँ, और मेरे पास एक जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे, तो ब्रेक के अंदर वो मुझे कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब इनको समझाए हमने वहाँ रहना है और हम डरते हैं, तो ये आप तो बात कर लेते हैं, हम किधर बात कर सकते हैं, मैं बनू का रहने वाला हूँ। तो वो एंकर ने खुद ही सुना, तो मैंने इसलिए कहा एक प्रोग्राम में कि जी इनकी बातचीत जो है ये मोतबर नहीं है इस वक्त इस हालात में, क्योंकि इनके ऊपर दबाव डाला गया है और ये बात नहीं कर सकते, और इसलिए इनकी राय जो है वो मोतबर नहीं है। कुछ लोग हैं जो मेरे जैसे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो सही बात है वो हमने करनी है, लेकिन ये जब यहाँ पर स्कूल का वाकया हुआ और पूरे मुल्क में एक लहर दौड़ गई, तो उसके बाद मैं समझता हूँ काफ़ी सारे लोग जो है इनके खिलाफ बोलते हैं, और काफ़ी जो आम मीडिया है उसके अंदर अभी, बल्कि यही मैं कहूँगा कि ये पीटीआई जैसे पार्टी है जो पहले कहती रही है कि जी तालिबान को आप ऑफिस बना दे, फलाना कर दे, फलाना कर दे, ये सारी बातें लोगों को मालूम है, अभी वो भी इनके खिलाफ बात करते हैं। और ये जब कोई इस तरह की कोई मेरे ख्याल में लास्ट जो वाकया हुआ था उसके ऊपर पहली बार पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत की, वरना पहले यही पिशावर में एक चर्च के ऊपर हमला किया गया था जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में मजम्मती करारदाद भी पास नहीं हो सका। तो ये वो हालत है, मैं समझती हूँ कि चेंज हुआ है और अभी काफ़ी स्पेस है जिससे हमने इसको आउट किया है इन लोगों को, और मेरे ख्याल में मीडिया में जनरली वो नहीं आ सकते। जो मेरे भाई ने
ये खालिद फारूकी साहब,
खालिद फारूकी साहब उनने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जुबान जो है बड़ी गलत इस्तेमाल की जाती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कुछ टीमें जिस तरीके से इन्होंने की है, ये पीटीआई ने टीमें बिठाई एक एक दो इंडिविजुअल्स की, और जिसको वो आगे से वो कर लेते हैं मार्क कि ये आदमी है या ये औरत है जो बोल रही है तो इसको टारगेट करो, तो वो दो तीन जो है उनके खिलाफ आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह हुकूमत को कुछ टीमें जो है बनानी चाहिए थे, और मैं समझता हूँ कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उनको चेयर पूछ सकते हैं, और मेरे ख्याल में ज्यादा इनका नहीं है लेकिन इनके जो हिमायती है खासकर पीटीआई या जो जमात इस्लामी है या इस तरीके से मुस्लिम लीग नून भी कोई खास बात तो नहीं करती इनके खिलाफ, आर्मी है जिस अपना डायरेक्शन सीधा किया हुआ है और बाकी जो है वो फॉलो कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन को।
ओके, इस मोड पे एक कॉलर को हम सुनते हैं। दीर से लियाकतुल मुल्क साहब ने कॉल की है। जी अस्सलाम वालेकुम लियाकतुल मुल्क साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप?
और फारूकी साहब की बातें हमने सुनी है
जी।
सोशल मीडिया के हवाले से जहाँ तक आप लोगों की खदशात है तो ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में 100% सोशल मीडिया एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, लेकिन जो बुनियादी वजूहात है एक्सट्रीमिज्म के आप वो बात नहीं करते कि ये 68 साल से पाकिस्तान पुरअमन रहा था, लेकिन रशिया एग्रेशन के बाद पैसा अमेरिका अपनी मफादात के लिए चाइना को काउंटर करने और या एटमी कैपेबिलिटी को बैक करने के लिए, इस तरह कश्मीर का मसला, इस तरह इंडिया की जो एग्रेसिव ख्याल है और उनका जो अमल है, रूस ने जो कुछ किया अमेरिका ने, उसी की वजह से ये एक्सट्रीमिज्म यहाँ पैदा हुई है। और ये सोशल मीडिया भी खत्म नहीं कर सकती, प्रिंट मीडिया भी नहीं खत्म करती, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म कर सकती। इनके पास इनका इलाज सिर्फ अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है, उनके जुल्म के खिलाफ यहाँ पर ये जज्बात उग रहे हैं या एक माइंड सेट बन रहा है। अगर जब तक वो अपने अपने इन चीजों पर रिव्यू नहीं करते और इन चीजों को इन पर सोचते नहीं है और अपनी पॉलिसियां नहीं बदलती, उस वक्त तक यहाँ सोशल मीडिया भी इस्तेमाल हो, प्रिंट भी इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रॉनिक भी
ओके बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, ये आपके व्यूज थे। और जी ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी और दोबारा जो आम मीडिया है उसके किरदार पे हम आते हैं। फाटा में काफ़ी इस वक्त अगर हम देखें तो चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं और आपको पता है कि वहाँ के जो लोग हैं, कहा जाता है कि जिस तरह 1980s में उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है इस्लाम के नाम पर, जो कुछ उन्हें बताया गया अपने मुफादात हासिल करने के खातिर, तो उसको काउंटर करना जो है वो कितना ज़रूरी है और उसको वो कुछ जो के होना चाहिए एफएम जो रेडियोस इस वक्त चल रहे हैं फाटा में उस पर वो हमें सुनाई नहीं देता, इसकी क्या वजह है?
दरअसल ये ऑर्गेनाइज नहीं है, कई बार जो है कोशिश की गई ऑर्गेनाइज इसको करने की कि जो एफएम की नशरियात है उनको फोकस किया जाए और उनके ऊपर बातचीत की जाए। मैं समझता हूँ कि फाटा के मैं काफ़ी सारे लोग अभी जो है जाग गए हैं, उनको मालूम है कि किस वजह से उनके ऊपर इतनी बड़ी आफत आ पड़ी और फिर जो है हुकूमत को लिटरली फौज को इस्तेमाल करके उनको निकाल बाहर करना पड़ा और अभी ये वापस जा रहे हैं। खासकर मैं शुमाली वजीरिस्तान या खैबर एजेंसी की बात कर रहा हूँ, तो लोग तो दिन में आपके साथ मिले हुए हैं। यही वो वक्त है कि आप ये इंटरनेट जो इलेक्ट्रॉनिक नशियात है इनको फोकस करके उनकी आवाज़ साथ मिला के और उनको, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब वो अपने एरिया में वापस जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर मजबूत करना ये हुकूमत का काम है। हमें स्वाद की मिसाल हमारे सामने है, फौज ने वहाँ पर दहशतगर्दों को निकाल दिया और वहाँ पर जो सोसाइटी है उन्होंने अपना रोल किरदार अदा कर दिया और वो इस तरह है कि अभी फजलुल्लाह वहाँ वापस नहीं आ सकता,
ना कोई एफएम रेडियो जो है वो सुवात में मौजूद है। और यही क्रिटिसिज्म है ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तानी फौज पे कि जो उन्होंने ऑपरेशन जो दिल से सुवात के एरिया में किया वो फाटा में जो है कभी नज़र नहीं आया। ज़र्ब अज़्ब जो है वो आप लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मौसर साबित हुआ है, लेकिन उस पर भी ये बात की जा रही है कि ये एक हाफ हार्टेड ऑपरेशन जो है इस वक्त हो रहा है। और फिर ये पूरा इलाका अगर हम देखें फाटा का, ये फौज के अंडर हैं ख़ासतौर पर इन दिनों, तो जब भी वहाँ कोई एफएम रेडियो आप ऑन करें आपको गाने जो हैं वो सुनाई देते हैं। वहाँ पे जो तालिबान हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको काउंटर करने के लिए और गलत और सही में फ़र्क जो है वो बताने के लिए कोई जो है कुछ सुनाई नहीं देता। इसकी आप हमें बताएं क्या वजह है, फिर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे।
बिल्कुल, इसके अंदर ये जो मौजूदा आर्मी की आदत है और ये हम जब बात करते हैं राहील शरीफ साहब की, उनका बिल्कुल सोल्जरली एटीट्यूड है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जो बिल्कुल कपल चीज़ है वो ये है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है या इसकी जो हमारी सियासी क्यादत है इसका इनपुट इसमें कुछ भी नहीं है और तभी आपको वन साइडेड नज़र आ रहा है, क्योंकि मिलिट्री तो वही कर सकती है जो मिलिट्री करती है, लेकिन उनको अपने मेरे ख्याल में उनको खुद भी ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत को भी कि अभी ये पॉलिटिकल साइड है जिसने स्ट्रेंथन होना है, जो प्रॉन्ग है जो नहीं चल रही है वो पॉलिटिकल स्ट्रांग प्रांग है जो कि नहीं चल रही है, और जिस तरह ये रेडियो के ऊपर टीवी की नशरियात या दूसरे जो भी जराया अबलाग है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो जा रहे हैं वो डर रहे हैं, वो इस डर में है कि क्या तालिबान वापस आ जाएंगे या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हर वक्त उनके कान में अगर ये बात गूंजती रहे, और जिस तरह स्वात के लोगों ने अपना किरदार अदा किया, क्योंकि आपने उनको सही तरीके से अपने मिलिट्री प्रांग के साथ मिलाया था, मेरे ख्याल में यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल एफर्ट्स को इसके साथ मिलाया जाए, और यही चीज़ है जो आपको मिसिंग नज़र आ रही है, यही वो फ़र्क है जो स्वात में और बाकी इलाकों में आपको नज़र आ रहा है। और प्योरली मिलिट्री स्टांस, जो कि अगर मिलिट्री क्यादत अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करनी चाहती, लेकिन उनको स्पेस प्रोवाइड करना होगा कि आप ले आए ये चैनल वाले हैं, ये कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पर अपना ट्रांसमीटर लगाना चाहते हैं, या आप लगा भी दें। पहले हम लगा भी चुके हैं कुछ जगहों पे, क्योंकि ये जो ये प्रॉपर एक ऑपरेशन है, इसको 4G जबान में साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है, पूरा एक डायरेक्टरेट में है GHQ में, फिलहाल में वो वेस्ट बैठा हुआ है और उन्होंने काम करना होगा।
सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, मज़ीद कुछ देर के लिए हमारे साथ रहिए। खालिद फ़ारूकी साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया। यहाँ US से डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। आगे चलकर पाक अफगान जो ताल्लुकात है उस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक।
What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। इस वक्त ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, वेल नोन डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ हैं पाकिस्तान से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आपके जाने पहचाने तर्जियानकार। और हमने मधु किया था काबुल से रहीमुल्ला समंदर साहब को, अफ़गान आप सीनियर जर्नलिस्ट और जाने पहचाने तर्जियानकार हैं, लेकिन इस वक्त उनके सेल के सिग्नल्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम ऑन एयर नहीं कर सकते। डॉक्टर रुहेल साहब, आप किससे हम आगाज़ करना चाहेंगे? एक दफ़ा फिर हमें पाक अफगान ताल्लुकात में एक तरह से कशीदगी जो है वो नज़र आ रही है, और ये जो है ये अफगान पार्लियामेंट पे गुज़श्ता दिनों जो हमला हुआ था उसके बाद ये कशीदगी नज़र आ रही है। ये बताइएगा कि हमला पाक अफगान पार्लियामेंट पर और इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पर, ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है, जब भी कोई हमला वहाँ होता है दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं उसमें कशीदगी तनाव जो है वो नज़र आने लगता है।
शनाज, इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो आज से पहले 5-10 साल से जिस तरह से अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर चल रही है और उसमें पाकिस्तान की जो अस्करी इदारे हैं उनकी एक मुबहम सी पॉलिसी, जुबानी कलामी कुछ और अमली तौर पे तालिबान और मिलिटेंट्स के कोई ना कोई ऐसे ग्रुप्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जिससे उनके बकौल जो हिंदुस्तान की का जो ग्रुप है या हिंदुस्तान की तरफ से जो पेशकदमी होती है अफगानिस्तान में उसको काउंटर करने के लिए और अपना हल्का असर रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयां की। तो उसकी वजह से वो कियानी साहब की मौजूदगी तक जो है वो पॉलिसी काफी काफी प्रैक्टिकल सूरत में हर रोज देखने में आती रही, लेकिन जब से नए आर्मी चीफ आए हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने काफी हद तक ये सीख लिया है कि ये जो पॉलिसी है दोगली पॉलिसी उस पे चल के पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो रहा है और उसको काफी हद तक जो है वो अगर 100% नहीं तो 95-90% तक جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے.
اوکے, لیکن ڈاکٹر روہیل صاحب کہتے کلامی معاف, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی میں کافی چینجز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, اور یہ میرے خیال میں امریکہ میں جو عہدیدار ہیں, کئی عہدیدار, سارے نہیں, ان کا بھی یہی, ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, پاکستان کا بھی یہی دعویٰ ہے. لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ, افغان پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد افغانستان کے این ڈی ایس کا جو فوری رد عمل جو سامنے آیا, اور جس طرح انہوں نے اس کا الزام آئی ایس آئی کے ایک آفیسر ہے ان کو دیا, تو یہ کیا تھا؟ کیا این ڈی ایس اپنی خامیاں چھپانے کے لیے اس کا یہ رد عمل تھا, یا پھر یہ واقعی ایک, ہم کہیں کہ ایک ٹرو انڈیکیٹر ہے کے طور پر اس کو لیا جائے؟
جی, میں وہ یہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ فاگ آف دا وار اور یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اندر میں اندر خانہ اپنی لڑائیاں ہیں, ان میں بھی مختلف جو افسران ہیں ان کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہو سکتے ہیں, اور ان کی جو انفارمیشن ہے وہ مس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. تو پاکستان نے سرکاری طور پہ, پاکستان کے عسکری اداروں نے سرکاری طور پہ اس کو کنڈیم کیا تھا, لیکن پاکستان کی کا اپنا کنٹرول اپنے اداروں کے اوپر بھی کئی دفعہ نہیں رہتا, اور کئی دفعہ ان سے جو منسلک جو غیر سرکاری قسم کے جو عوامل ہیں, جو ایلیمنٹس ہیں جن کو ان لوگوں نے پال رکھا ہے اور گائے بگائے ان کو استعمال کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے, وہ بھی کبھی اپنے طور پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں مختلف پاسبلٹیز جو ہیں وہ بھی ہیں, لیکن افغانستان کے اندر بھی ان کی کارکردگی بھی جو ہے افغان انٹیلیجنس کی, افغان پولیس کی, افغان فوج کی, وہ بھی بڑی مشکل سے ایک بلو ایوریج ٹائپ جو ہے کمپیٹنسی کے اوپر آ رہی ہے. تو ان کے لیے بھی سیاسی طور پہ بھی اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بھی اور اپنے علاقے میں ان کا اپنا جو کنٹرول ہے وہ بھی کافی حد تک کمزور ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں اسٹیٹمنٹ میں. اور دوسرا جو اس وقت صدر غنی صاحب ہیں ان کی جو مخالف لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان کی بھی اپنی سیاسی ضروریات ہیں کہ وہ پاکستان افغان تعلقات کو بہتر ہونے اور جو افغان حکومت کی پالیسی ہے پاکستان سے تعلقات کو بہتر بنانے کی, اس کو کریٹیسائز کریں اور کہیں کہ دیکھیں آپ نے پاکستان کے ساتھ صلح بھی کی اور پاکستان کو آپ نے اچھا سمجھا اور ان پہ اعتماد کیا, اور اس کے باوجود جو ہے پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک افسر جو حالیہ افسر ہیں یا بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جو وہ ریٹائرڈ افسر ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے افغان پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. لیکن اگر براڈر پکچر دیکھی جائے تو پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا کہ افغان پارلیمنٹ جس کو جن کی وہ مدد چاہتے ہیں اور جن کی مدد
جی, لیکن ڈاکٹر روہیل صاحب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ جینوئن میرے خیال میں ان کے ڈیمانڈس بھی ہیں افغانستان کے پاکستان سے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, ابھی جو حالیہ ایک لسٹ جو ہے وہ میڈیا میں گردش کر رہی تھی افغانستان کے جو مطالبات ہیں پاکستان سے, تو آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی کہ یہ کس حد تک حقیقت پسندانہ ہیں, اور پاکستان یہ سب کچھ جو ہے یہ پاکستان کے کنٹرول میں کہاں تک ہے, جس طرح افغانستان کا حالیہ ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ پشاور اور کوئٹہ میں جو طالبان لیڈرشپ ہے اس کو نظر بند کیا جائے اور صحیح معنوں میں حقانی نیٹ ورک جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. دوسرا ایک جو بظاہر کافی ان کا صحیح مطالبہ لگتا ہے وہ یہ کہ جو افغان طالبان جو ہیں افغانستان کے اندر لڑائی میں زخمی ہوتے ہیں پھر آ کے ان کا علاج جو ہے پاکستان کے ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے, تو وہ ان کا علاج جو ہے وہ بند کر دیا جائے, ایسا نہ کیا جائے. کہاں تک یہ جینوئن آپ کو لگتے ہیں افغانستان کے یہ مطالبات آپ کے ملک سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ حد تک جینوئن ہے. پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے, پہلے تو ان مطالبات کی بات کریں, اصل میں یہ ایک پرانی اپریل کی یہ لسٹ ہے, اپریل کے مہینے کی, جو ایک نان پیپر کے طور پہ تھی کہ ان کی طرف سے کیا مطالبات ہے, اس کے اوپر پہ بات چیت کی گئی اور اس کے اوپر جو ہے این ڈی ایس اور آئی ایس کے درمیان جو
معاہدہ
یو سائن ہوا تھا معاہدہ, وہ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھے اور ان کا کوئی جواب ان کو پرووائڈ کر کے دونوں گورنمنٹس کے درمیان معاہدات ہوئے ہیں. तो वो पुराना पेपर था जो निकाला गया था और वो साइन नहीं था, और इसको नॉन पेपर कहते हैं फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जो कि मुतालबात नहीं होते लेकिन डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, और ये दोनों मुल्कों के दरमियान डिस्कस होता रहा। एक तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में एक चीज़ जो कि सोची जाती है कि तालिबान के ऊपर, अफगान तालिबान के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। वो हमारी बात इतने हद तक नहीं सुनते जितना वो सोचते हैं कि शायद वो हमारे। नंबर टू जो है, वहाँ पर ऐसे लॉबीज़ हैं और काफ़ी स्ट्रांग लॉबीज़ हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, उसमें ख़ासकर हामिद करज़ई साहब और उनके पीछे इंडिया जो है। आपने अभी देखा कि MQM के बारे में जो खबरें आई हैं और जो उनके एक लीडर ने खुद बयान दिया है, और उसके मुताबिक जो है ये चीज़ें हैं कि इंडिया उनको 8 मिलियन।
लेकिन ब्रिगेडियर साहब, कतई कलामी माफ, ऐसी खबरें आती रहती हैं लेकिन इसके कोई ठोस शवाहिद जो है वो मौजूद नहीं हैं, अभी तक सामने नहीं आए हैं, और अभी ये मेरे ख्याल में पूरा जो मामला है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, तो अभी जब नतीजे सामने आएंगे हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अफगान जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने दौरा करना था पाकिस्तान का, लेकिन उन्होंने अपना दौरा जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। ये बताइएगा कि इसकी क्या दोनों ममालिक के माबेन जो बज़ाहिर एक दफ़ा कशीदगी नज़र आ रही है, ये इसकी वजह है या फिर क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या फिर मुल्क के अंदर जो हालात हैं वहाँ पे वो है?
दरअसल उसकी बुनियादी वजह ये है जो आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दे रही है कि अफगानिस्तान में ऐसे लॉबीज़ हैं और उन लॉबीज़ के गवर्नमेंट में भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छा नहीं रखना चाहते हैं, और उसमें हामिद करज़ई साहब और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया है काबुल के अंदर, और उनके पास काफ़ी सारा पैसा है और उनके पीछे भी काफ़ी सारा पैसा है। वो हुकूमत को मुस्तकिल उन्हें दबाव में लाया हुआ है। अपने जो अशरफ गनी साहब है, बड़े नेक नीयत आदमी हैं, वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, और जैसे आपने बात की कि अगर कहीं जगहों पे, जैसे आपने पॉइंट आउट भी किया कि अस्पताल में कोई तालिबान जो वहाँ ज़ख्मी होते हैं उनकी इलाज होता है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए कि उन लोगों को पकड़े, इलाज भी करें और पकड़ के फिर अफगानिस्तान गवर्नमेंट के हवाले भी करें। मैं समझता हूँ कि वैसे भी अगर वो कहीं पाकिस्तान के एरिया में मौजूद हों उनको भी वो पकड़ के और उनके हवाले करें। मैं समझता हूँ कि दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आपने काबुल में जाके ऐलान किया जो अफगानिस्तान के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, और दरअसल यही तमाम जिस तरह तालिबान है, चाहे वो इधर हैं चाहे इधर हैं, जो कुछ भी वो करते रहे हमें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, तो हमें मालूम है कि किस किस्म के लोग हैं और ये फ्यूचर के लिए अफगानिस्तान के लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो अगर हमें अफगानिस्तान कि फ्यूचर में दिलचस्पी है तो हमें उनके साथ पूरा जो है, मैं समझता हूँ कि दी होल हॉग जाना चाहिए, बयान के हद तक नहीं, जो भी अब प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और इसके अलावा ये जो मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बात करनी वो नहीं होनी चाहिए। हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में कितने हमने जो यहाँ से निकाले हैं वो सारे अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि कि अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फौज बहुत बड़ी है और हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें उनसे उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए और ना उनको के ऊपर इल्ज़ाम लगाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो इधर, जैसे कल भी जो लाहौर में लोग पकड़े गए, ये उधर से आए होंगे। जब वो TTP की बात करें, इसका मतलब है कि ये मौलवी फजलुल्लाह के लोग हैं, आगे खैर ये पता इनको चलेगा कि कौन है, तो वो उधर बैठे हुए हैं, तो उसकी कोई बात नहीं। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और ये जो थोड़ी बहुत जो अपने अशरफ गनी साहब दबाव में हैं, जिस तरह वो इंटीरियर मिनिस्टर ने अपना विजिट जो है वो पोस्टपोन किया है, कोई बात नहीं, ये इस तरह होता रहेगा कुछ अरसे के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे ताल्लुकात सिर्फ इसके ऊपर होंगे कि अफगानिस्तान ये समझेगा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ लड़ाई ये पाकिस्तान का काम है, तो मेरे ख्याल में वो ये सोच बंद कर दे। अगर हम भी उनको ऐसी कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं तो हमें नहीं देनी चाहिए। वजह इसकी ये है कि अमेरिका बमा 41 ममालिक के वो अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सका, तो पाकिस्तान कैसे कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ ایک اسسٹنس کے رول کے طور پہ, اور وہ بھی بڑے کلیئرلی دماغی طور پہ اور دل کے طور پہ بہت بالکل کھلے ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے, جدھر جدھر بھی نظر آتا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے آپ نے خود فرمایا اسپتال میں, بالکل اس آدمی کے اوپر گارڈ بٹھائے. ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ ہمارے طالبان جو ہے وہ زخمی ہو کے انہیں اسپتالوں میں آتے ہیں اور ہم وہیں سے پکڑ کے لاتے ہیں. تو میرے خیال میں وہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ, اگر وہ وہاں پر افغان حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہیں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ
لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اینی وے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کل صدر غنی کے جو نائب ترجمان ہیں مسٹر ہاشمی, انہوں نے افغانستان کے 3 صوبوں کا باقاعدہ نام لے کر کہا ہے کہ یہاں پہ داعش جو ہے وہ کافی حد تک سرگرم ہے. ان صوبوں میں ننگرہار ہے, فرا صوبہ ہے اور ہلمند صوبہ میں انہوں نے داعش کی تصدیق کی ہے ان 3 صوبوں میں. یہ بتائیے گا آپ بریگیڈیئر صاحب کہ افغانستان میں داعش کے لیے کتنی گنجائش ہے؟
دراصل وہاں پر تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر وہ وجود میں آئے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ وہ طالبان کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ فیوچر کے لیے افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. کیونکہ داعش جو ہے وہ اپنے جو ان کی شفاقیت ہے
جی.
وہ القاعدہ سے زیادہ انہوں نے دکھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایریا کے لیے, افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے ایک تشویش کی بات ہے اور اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے ہر وقت.
اوکے ڈاکٹر روہیلا, آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا. داعش کا جو سر اٹھانا ہے اور اس کا اثر رسوخ جس طرح بڑھ رہا ہے, باقاعدہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہے, یہ بتائیے گا کہ جو افغان طالبان ہیں اور افغان گورنمنٹ کے مابین مذاکرات کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, تو اس پر داعش کا جو جس طرح اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے, اس کے آپ ان کوششوں پر منفی اثرات دیکھتے ہیں یا پھر اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہوں گے؟
میرے خیال میں تو اس کے منفی اثرات ہی ہو سکتے ہیں کہ داعش جو ہے وہ ایک اور فیکٹر آ جائے گا اور افغان حکومت کو یا جو بھی افغان میں برسر اقتدار پارٹی ہے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ طالبان کو ہی نیوٹرلائز نہیں کرنا, انہی کے مطالبے ہمیں نہیں ماننے بلکہ داعش کے مطالبے بھی ماننے ہیں. لیکن داعش اور طالبان جو ہیں یہ مین پاور تو وہی ہے, یہ جیسے ایک شہر میں جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک جرائم پیشہ گروپ سے دوسرے جرائم پیشہ گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں جو ان کو بھتا دیتا ہے یا جو ان کو لالچ دیتا ہے. تو یہ ریکروٹمنٹ کی ایک صورتحال ہے. جو لوگ پچھلے 10 سال سے 15 سال سے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں جانتے, ان کا بچپن اور ان کی جوانی جو ہے وہ اسی بات میں گزری ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی کے خلاف جنگ کرنی ہے, تو وہ ایک قبیلے کے طور پہ, ایک گروہ کے طور پہ, ایک گروہ سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر کے, ان سے علیحدہ کر کے دوسرا گروپ جو ان کو اچھی مراد دے یا ان کو لالچ دے یا ان کو یہ دے کہ آئندہ سے ہماری حکومت ہوگی یا ہم لوگ جہاں پہ ہمارا انفلوئنس ہوگا اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ڈائنامکس ہے یا یہ جو اس کی انڈر لائن یا اس کی جو بنیاد یا اس کی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے جنگجو لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ سے دوسرے میں شامل ہوتے ہیں, اس کو سمجھنے کی اور اس چیز کو روکنے کی اور اس کو نیوٹرلائز کرنے کی جو بات ہے وہ برسر اقتدار لوگوں کو اس پہ آنا چاہیے. اور جس طرح سے پروگرام میں آپ پہلے بحث کر رہے تھے آپ لوگ کے, اس میں جو نظریاتی خد و خال ہیں, اس میں جو انڈر لائن اکنامک اور روپیہ پیسہ, اس کے علاوہ جو ایک نظریاتی جنگ ہے اور ایک عقیدے کی جنگ ہے اور ایک فرقہ واریت کی جنگ ہے, اور جو جس طرح سے انسانیت کی وہاں تذلیل ہو رہی ہے اور جس طرح سے مسلمان کو مار رہے ہیں, انسان کو قتل کر رہے ہیں, اس ساری چیز کو, اس نیریٹو کو روکنا اور ایک بھائی چارے اور ایک برادرہڈ اور ایک نیشنل افغانستان میں ایک اجتماعی نیشنلزم کو پیدا کرنا, اور پاکستان میں بھی یہ جو مدرسے اور اس طرح کے جو میڈیا میں جو لوگ ہر بات میں ملا کی بات جو ہے وہ آخری سمجھی جاتی ہے, اور جب ملا بات کرنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے بات کرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ دوسروں پہ سے زیادہ اہمیت اس کو دی جاتی ہے, اور جس طرح سے یہ دائیں بازو کی آج کل رمضان میں ہر ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ایک ہیجمنی ہے, ایک ایک آپ یہ سمجھے کہ ان کا قبضہ ہے جس میں کوئی اور سوچ نہیں دوسری نہیں آ سکتی, اور جو یہ جو ساری باتیں ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا اور ایک الٹرنیٹو نیریٹو دینا جس میں انسان انسان سے پیار کرنا سیکھے, اپنے مذہب لوگوں سے پیار کرنا سیکھے, اور اپنے مذہب سے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں اور جو پاکستانی ہیں, جو انسان ان جنرل ہے, اس کو اس سے پیار محبت اور دوستی سے بات کرنا, اور اس کے عقیدے اور اس کے طرز زندگی کو بھی اپنے برابر سمجھنا, یہ جو چیزیں ہیں الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ تشدد پسند گروپوں
بالکل اور امن لانے میں یہ کردار, یہ چیزیں ہی کردار ادا کریں گی. ڈاکٹر روہیل اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے, اور بریک کے بعد خفیہ سفارتی کیبلز کو افشا کرنے والی جو ویب سائٹ ہے ویکی لیکس, اس نے کچھ نئی جو معلومات ہیں وہ جاری کی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں اس وقت وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ, اور اس وقت بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے, اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. اور ڈاکٹر روہیل صاحب, یہ جو نئی معلومات جو ہیں ویکی لیکس نے ریلیز کی ہیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سعودی عرب کا جو سفارت خانہ ہے اس میں 2012 میں جو سعودی سفیر ہے ابراہیم عبدالعزیز, ان کی اور نصیر الدین جو حقانی ہیں, حقانی نیٹ ورک کا ایک اہم رہنما تھا جو 2013 میں اسلام آباد میں کسی نے اس کو قتل کر دیا تھا, ان دونوں کے بیچ میں روابط کے حوالے سے کافی معلومات سامنے آئی ہیں. یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک حیران کن ہیں, ایسے میں جب سعودی عرب یہ کہتا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہے.
میرے خیال میں یہ ذرا بھی حیران کن نہیں ہے. امریکہ کے بہت سارے اتحادی جو ہیں وہ اپنی صورتحال بھی دیکھتے ہیں, اپنی ان کی ایک پرسپیکٹو ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دل سے جو امریکن جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے مطابقت رکھنے والی حکومتیں بہت کم ہیں مڈل ایسٹ میں, خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کا جو نیریٹو ہے اس میں کچھ امریکن نیریٹو میں بھی کچھ ایسی اوور آرچنگ قسم کی ایک صورتحال ہے جس کو باقی جو ممالک ہیں یا اس خطے کے جو لوگ ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتے اور اس کو 100% ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس سارے بیانیے میں سے اپنی ترامیم جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی جو موٹی موٹی بات آپ کی صحیح ہے, امریکہ کی بات صحیح ہے, لیکن کے بعد ان کا ایک اپنا نیریٹو شروع ہو جاتا ہے, اور جس میں سعودی حکومت جو ہے وہ روپیہ پیسہ الٹرنیٹو نیریٹو اور الٹرنیٹو جو بات ہے یا جو متبادل جو سوچ ہے یا جو امریکہ کی جنگ میں جو ترمیمی ہیں پیراگرافس ان میں سعودی عرب جو ہے وہ پیسہ دینے والا اور پاکستان جو ہے وہ مین پاور پرووائڈ کرنے والا ہے. اس میں جو ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ افغانستان میں ابھی پراکسی وار ختم نہیں ہوئی اور ایران بھی اس گناہ میں شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, سعودی عرب بھی شامل ہے, ہندوستان بھی شامل ہے, اور افغانی خود بھی اپنی آپشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ یہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور وے کرتے رہتے ہیں. طالبان کے ساتھ اسی طرح سے ایران کا ابھی بھی مراسلہ سازی جاری ہے, ان سے ان کی بات کی پر ان کی سپورٹ جو ہے کسی حد تک جاری ہے. تو سعودی عرب بھی جو ہے وہ اس میں وہ دیکھتا رہتا ہے کہ بھی ہمیں جو ہے وہ 100% इससे विदड्रॉ करने की जरूरत है या अभी भी कुछ लोगों से हमें ताल्लुकात रखने जो है वो चाहिए, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसडर हैं उन्होंने जलालुद्दीन हक्कानी के लिए जो उस समय बहुत अच्छे से बीमार हैं उनके बेटे ने जब उनको अप्रोच किया तो उन्होंने उनसे मिले, बेटे से मिले भी और उनको इलाज के लिए उनकी जो है वो रिकमेंडेशन की और उनको कहा कि भाई शायद इनका इलाज होना चाहिए। शायद वो सऊदी अरब में उनका इलाज हुआ या नहीं ये तो विकीलीक्स में नहीं बताती,
लेकिन सऊदी पासपोर्ट भी उनके पास विकीलीक्स के मुताबिक मौजूद था, दोनों के
मुताबिक वो जो है वो आना जाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, उनके पास पासपोर्ट है। सऊदी पासपोर्ट होने का मतलब ये है कि बहुत हाई लेवल के ऊपर किसी ने उनको ये मुराद देने का फैसला किया। पासपोर्ट सऊदी अरब में मामूली सा अकामा लेना भी जो है वो कितना मुश्किल है, तो पासपोर्ट लेना जो है उसके लिए किसने किस लेवल के ऊपर किसी वजारती लेवल के ऊपर ये फैसले किए होंगे कि इनको पासपोर्ट।
लेकिन ये विकीलीक्स अगर सच कह रहा है तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब डबल गेम जो है वो खेलता रहा है पूरे इस मामले में, और अभी भी जिस तरह वो कहता है कि वो दाइश के ख़िलाफ़ हैं लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, ट्रस्ट जो है वो काफ़ी लोग इसी वजह से नहीं करते उन पर और उनकी जो पॉलिसी वो बयान करते हैं उस पर। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मुलाकातें हो रही थी 2012 में, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो कहाँ थी, क्या उनको खबर थी, और अगर थी तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान भी तो ये कहता रहा है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का साथी है, इतिहादी है।
दरअसल ये जो 2013 से पहले जो हुकूमत की पॉलिसी थी या सऊदी हुकूमत की पॉलिसी थी इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, ख़ासकर जो हमारे यहाँ नए आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने सिचुएशन चेंज कर दी। सऊदी अरब में भी जो पहले जो भी उनका नरेटिव था वो शहजादा मुकरिन ही ज़्यादा उनके मुसन्निफ हुआ करते थे, वो नेशनल सिक्योरिटी के मशीर थे और वो आपको मालूम है कि शायद अमेरिका में भी 16-17 साल रहे हैं, तो ये तमाम गेम वो खेलते रहे हैं उसी तरीके से। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो सऊदी अरब है इनके अपने नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप किए हैं और जिधर वो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट से टकराते हैं तो वो उसके ऊपर भी बात करते हैं। आपने देखा कि सीरिया के बारे में उनका एक खास था और जब अमेरिका ने इनकार किया अपनी वजूहात की तरफ से तो उन्हें अमेरिका के ऊपर भी मतलब एक तरीके से एतराज़ात किए। तो ये तो मैं कहता हूँ कि अंदर से जो वो अपना वो जिस तरीके से खेलना चाहते हैं वो हैं। और 2013 से पहले दिसंबर 2013 से पहले मैं समझता हूँ कि ये हमारी हुकूमत के भी जो कोई खास स्टैंड थे वो क्लियर नहीं थे, ये तो इसमें क्लियरिटी आई है जब नया आर्मी चीफ आया है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है जो चाहे
जी। बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपने आज के शो में हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच, आइंदा भी आपसे बात होगी। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि यहाँ वाशिंगटन से डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब एक और वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, यूनान को जिस मालियाती बहरान का सामना है उस पर मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी। यूनान के दिवालिया होने का ख़तरा है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो यूरो जोन के जो 19 ममालिक हैं उसका वो हिस्सा ना रहें। आज यूनान के अंदर जो बैंक्स हैं उनसे रकम निकलवाने पर भी पाबंदी जो है वो लगाई गई, इसके अलावा यूनान का जो स्टॉक मार्केट है वो भी बंद रही। ये बताइएगा कि इस पॉइंट पे जो हालात नज़र आ रहे हैं क्या कुछ आप इम्कान देखते हैं यूनान का इस बहरान से निकलने का, काफ़ी इजलास तो हो चुके हैं लेकिन अब भी कुछ कहा जा सकता है कि हालात जो हैं उस कंट्रोल में आ सकते हैं?
लेकिन हर किस्म के हालात कंट्रोल में आ सकते हैं ऐसी बात तो नहीं है, बात ये आ जाती है कि दूसरे ममालिक के मकासद क्या हैं, दूसरे ममालिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो बहुत अहम होते हैं। इस वक्त जिस मामले में यूनान पहुंचा हुआ है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके डेट पोजिशन बहुत ख़राब है, कोई उनके जी डी पी के 3 गुना ज़्यादा डेट है, अब कौन उनको इतना डेट देगा? ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई एग्रीमेंट करना जरूरी होता है जिसके तहत यूनान की गवर्नमेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सरप्लस पैदा की जाए ताकि वो ये डेट वापस करने के काबिल हों। اگر وہ یہ کرنے کے لیے قابل ہوں گی تو پھر یونائیٹڈ یونین, یہاں تک یورو ایریا کا معاملہ ہے, یورپین یونین, یورپین سینٹرل بینک اور آئی ایم ایف ان کو اور پیسے دے سکتے ہیں, لیکن یہ جو ان کو ریلیف ملے گی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہوگی, یہ لانگ ٹرم ریلیف نہیں ہوگی. اس کے لیے بہت سے کام یونان میں کرنے پڑیں گے جو کہ اس وقت یونان کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ یونان غالباً یورو ایریا سے نکل جائے گا اور اس کی وجہ سے وہاں پر اکنامک کنڈیشنز اور خراب ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو 20-30% کم ہو جائے, جس کی وجہ سے وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ سکتی ہے اور اس کے برے اثرات دوسرے ممالک پر.
بالکل یہی میرا پوچھنا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پھر جو گلوبل اکانومی ہے, جو مارکیٹ ہے, اس پر اس کے کیا آپ اثرات دیکھتے ہیں؟ اگر
جی ہاں, یہ ٹیمپرریلی تو ہوں گے اثرات, خاص طور پہ یہ اثرات یورپ ہی میں پائے جائیں گے, اور جہاں تک اسٹاک مارکیٹ کا معاملہ ہے وہاں پر ٹیمپرریلی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور شاید کل بھی اس کے اثرات نظر آئیں, لیکن جہاں تک ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کا تعلق ہے وہاں پر جو ہے ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹ نے ایڈجسٹ کر لیا ہے کہ وہاں سے جو کیپٹل فلو ہونا تھا وہ ہو گیا, اور اب اس کے بعد چونکہ گریس اتنی اہمیت نہیں رکھتا اس لیے اس کی وجہ سے برے اثرات نہیں ہوں گے. یہ مانتا ہوں کہ کچھ ممالک میں فائنینشل سیکٹر سے برے اثرات ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ بینک جنہوں نے کہ گریس کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور ان کی ری پیمنٹ نہیں ہوگی, اس میں آسٹرین بینک بھی شامل ہیں اور اس میں کچھ اسپینش بینک بھی شامل ہیں, لیکن اس کا برے اثرات تو باقی دنیا میں نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت پروٹوکول ایسے ہیں جن کی بیسس پہ اس قسم کے اثرات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک, اوکے, پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے, اور داعش جو ہے وہ آج اپنی اینیورسری منا رہا ہے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یہ ایک سال پورا جو ہے اس میں داعش کی کاروائیوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس کے خلاف امریکہ کی قیادت میں جو کاروائی ہو رہی ہے ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا کچھ اتحادیوں نے اچیو کیا ہے؟
میرے خیال میں داعش کی حقیقت جو ہے وہ اب بہت لوگوں نے کافی حد تک شارٹ ٹرم میں ایک ایسے کینسر کی طرح سے ایکسیپٹ کر لی ہے جس کو مینیج تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو ایلیمینیٹ یا اس کو مکمل طور پہ ختم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اس میں جو بنیادی وجہ جو ویسٹ میں جس طرح سے انالسٹ سوچ رہے ہیں وہ اس کی عراقی حکومت کی کمزوری اور عراقی حکومت کی فرقہ واریت پہ بنیاد پرسیپشن جو ہے, اب ریالٹی کا تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اندر سے کیا صورتحال ہے, لیکن جو پرسیپشن ہے عراقی حکومت کی وہ یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں اپنے کیپٹل میں بیٹھ کے یا اپنی کیبنٹ میٹنگ میں, اس کے اثرات جو دوسری ملک گیر جو اثرات ہوتے ہیں اس کی ریپرکشن کے طور پہ سنی قبائل اور عرب قبائل نے کچھ ایسے اپنے لیے سروائیول کی ایسی صورتحال نکال لی ہے جس میں سے داعش جو ہے اس کو آکسیجن ملتی ہے, اس کو ریکروٹس ملتے ہیں اور وہ اس ایریا میں سروائیو کر سکتے ہیں. ساتھ ہی شام میں جو صورتحال ہے اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے, جب تک روس کی حمایت اس کو شامل ہے, جب تک ایران کی حمایت جو ہے وہ سیرین حکومت کو پریزیڈنٹ اسد کی حکومت کو ان کی حمایت شامل ہے, تو یہ ایک نہ حل ہونے والی ایک صورتحال پیدا ہوگی اور ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ انگورنیبل ہو گیا ہے, جہاں پہ ایتھنک کلنزنگ بھی چل رہی ہے اور ہر سیکٹر کے اندر ڈفرینٹ صورتحال ہیں امریکہ.
لیکن ساتھ جی بالکل اتحاد اور امریکہ کی جانب سے کوششیں بھی جاری ہیں. ڈیڑھ منٹ ہے آپ کے پاس ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ایران مذاکرات کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ اس دفعہ کوئی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب,
دیکھیے یہ دو تین بڑے اہم قسم کے کانفلکٹ باقی ہیں, جن میں ایک تو یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے انریچمنٹ کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے, اور دوسرا انسپیکشن کی بات آ جاتی ہے, اور تیسری بات آ جاتی ہے کہ کس اسپیڈ پر جو ریسٹرکشنز اس وقت لگائی گئی ہیں اکنامک اور فائنینشیل ریسٹرکشنز ایران پہ, ان کو ریلیز کیا جائے. یہ بڑے کمپلیکس قسم کے معاملے ہیں جن میں ڈومیسٹک ایشوز شامل ہو جاتے ہیں. کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے, لیکن امید یہ ہونی چاہیے کہ ایک دو ہفتوں میں شاید اس قسم کی کوئی پروگرس ہو جائے کہ آپ کو ایک پارشل قسم کا ایگریمنٹ مل جائے اور اس کے بعد دوسرے ایشوز پہ ایگریمنٹ کے اوپر باتیں چلتی رہیں. کب ہوگا, کیسے ہوگا, یہ کسی کا معلوم
کہنا ابھی قبل از وقت ہے. بے حد شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اور ڈاکٹر روحیل صاحب آپ کا بھی. اور سامعین اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے شہناز نفیس محمد ارسلان کو جہاں رنگ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.